हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यहाँ हजारों कहानियां हैं आपके लिए। वो आवाज़ किसी और की नहीं, ऋषभ के पापा मिस्टर खन्ना की थी। ऑटोमैटिक व्हीलचेयर पर बैठे हुए वे भी थोड़ी दूर से उन दोनों की बहस देख रहे थे, लेकिन जब बात आगे बढ़ी तो वे थोड़ा आगे आते हुए बोले, ऋषभ, अपनी गलती मानना सीखो और तुम किसी को अपनी मदद के लिए मजबूर नहीं कर सकते। समर के पीछे से झांककर अपने पापा को देखते हुए ऋषभ बहुत निराश होते हुए बोला, पापा आप, समर, तुमने पापा से बात की है क्या? जरूर उन्होंने मेरे बारे में उल्टा सीधा भरा होगा तुम्हारे दिमाग में। लेकिन देखो, सच में वो आज बहुत दिनों बाद ही मैंने ड्रिंक की है, और वो भी सिर्फ थोड़ी सी, बाकी बच गई थी इसीलिए मुझे घर ले आना पड़ा, पर मैं खरीद कर नहीं लाया स्पेशली, प्लीज बिलीव मी। ऋषभ ने अपने पापा से जिस तरह बात की वो समर को बिल्कुल पसंद नहीं आया, इसलिए वो उसे समझाते हुए बोला, ऋषभ, एटलीस्ट अपने पापा से तो तमीज़ से बात करो, उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं कहा, बल्कि मैं अकेला था तो खुद ही उनके पास आकर बैठ गया, और वे तो बस तुम्हारा भला सोचते हैं, लेकिन तुम पता नहीं क्यों उन्हें अपना दुश्मन समझते हो, और ये सब करके तुम सिर्फ उनके ही नहीं खुद के भी दुश्मन बनते जा रहे हो, और अगर तुम ये सब कुछ कंटिन्यू रखोगे तो सॉरी, मैं तुम्हारी कोई हेल्प नहीं कर सकता, तुम अपना खुद ही देख लो, और वैसे भी 3 साल से फेल हो रहे हो तो कोई बात नहीं, 1 साल फिर हो जाना, लेकिन नेक्स्ट ईयर रीट्राई मत करना। समर पता नहीं क्यों इतना ज्यादा हर्ट था और इतनी छोटी सी बात को लेकर इतना ड्रामा कर रहा था, लेकिन इन सब में शायद उसे ऋषभ के पापा का सपोर्ट भी मिल रहा था। वे भी नहीं चाहते थे कि ऋषभ समर के साथ ज्यादा समय बिताए, और इसीलिए शायद उन्होंने उसे ऋषभ के खिलाफ भड़काया भी था, जिसकी वजह से वो इतना ओवर रिएक्ट कर रहा था। ऋषभ इस बात को कहीं ना कहीं समझता था, लेकिन समर को इन सब में अभी ऋषभ की ही गलती नजर आ रही थी, और वो वहां से जाते हुए बोला, कोई और टीचर ढूंढ लेना अपने लिए, मैं तो तुम्हें नहीं पढ़ा सकता इस तरह से। ऋषभ आगे आकर लगभग रिक्वेस्ट करता हुआ बोला, प्लीज इतनी जल्दी कोई भी फैसला मत लो, और अगर तुम कहोगे ना तो जब तक तुम यहाँ आते हो मैं तब तक ड्रिंक नहीं करूँगा, आई प्रॉमिस, मैं तुम्हें एक दिन भी ड्रिंक किए हुए नहीं मिलूँगा और पढ़ाई को सीरियसली लूँगा। तुम्हें पता है जो कुछ भी तुमने समझाया था वो मुझे अब तक याद है, और मैं सच में सीरियस हूँ इस बार स्टडीज़ को लेकर, इसलिए प्लीज इतनी सी बात पर इतना बड़ा फैसला मत लो। ऋषभ की ये सारी बातें सुनकर समर ना चाहते हुए भी सोचने पर मजबूर हो गया। उसने एक नज़र उठाकर उनके पीछे व्हीलचेयर पर बैठे अपने पापा की तरफ देखा, जो कि इशारों से अभी भी उसे वहां रुकने के लिए मना कर रहे थे, और फिर उसने ऋषभ की तरफ देखा, जिसकी आंखों में उसे पछतावे के आंसू भी नज़र आ रहे थे, लेकिन फिर भी वो उस वक्त वहां पर नहीं रुका, लेकिन वहां से जाते हुए उसने इतना बोला, ठीक है, हम कल बात करते हैं अगर तुम मुझे यहाँ टाइम पर मिले तो। इतना बोलते ही समर वहां से चला गया, और उसकी ये बात सुनकर ऋषभ को पहले तो अपने कानों पर यकीन नहीं हुआ, लेकिन फिर वो काफी खुश हो गया, और उसे इस तरह से खुश होते देखकर उसके पापा ने थोड़ा अजीब सा सोचने वाला चेहरा बनाया और बिना ऋषभ से कोई बात किए ही वहां से चले गए। ऋषभ ने भी अपने पापा को वहां से जाते हुए घूर कर देखा, और उसने अपने मन में कहा, पापा, क्या दुश्मनी है आपको मुझसे, मुझे तो समझ में नहीं आता मैं आपका बेटा हूँ भी या नहीं। अपने मन में ही सही, लेकिन ये सब बोलते हुए ऋषभ थोड़ा सा उदास लग रहा था, और फिर वो उसी तरह से वो सब सोचते हुए अपने रूम में वापस आ गया, लेकिन वो ये सोचकर ही खुश था कि कम से कम समर ने इस बारे में फिर से सोचने के लिए कहा था और वो पूरी तरह से उसे छोड़कर नहीं गया था। इस बारे में सोचते हुए उसने अपने आप से कहा, अरे लेकिन ये कौन सी इतनी बड़ी बात है, मैं इस बारे में इतना क्यों सोच रहा हूँ, और मैंने उस तरह से रिएक्ट क्यों किया, उसे रोकने के लिए मैंने कितना कुछ कहा और तो और उससे रिक्वेस्ट की, जबकि मैंने आज तक किसी से भी इस तरह से किसी चीज़ के लिए रिक्वेस्ट नहीं की, तो फिर आज क्यों? ओ समर, 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 क्या कर रहे हो तुम मेरे साथ, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा। परेशान होकर खुद से बातें करते हुए ऋषभ ने दोनों हाथों से अपना सिर पकड़ लिया, और फिर उसकी नज़र सामने रखी हुई बियर की बॉटल पर गई। उसे उठाकर वो बिना कुछ सोचे समझे ही ड्रिंक करने लगा, और कुछ ही देर में उसने वो पूरी खत्म कर दी। वहीं दूसरी तरफ रात का वक्त था। शिविका पिछले कुछ दिनों की तरह आज भी काफी थकी हुई अपने ऑफिस से घर वापस आई, क्योंकि रेगुलर ऑफिस वर्क के साथ साथ अब उसे इवेंट मैनेजमेंट भी देखना पड़ता था, जिसमें काफी समय और मेहनत लगती थी। करण के अलावा उसकी हेल्प को लिए और ऑफिस में कोई नहीं था, इसलिए वो घर के अंदर आई और मेड ने उसे पानी लाकर दिया। शिविका इतनी ज्यादा थकी हुई थी कि वो अपने रूम तक भी नहीं जा पाई और वो वही मेन सिन के हॉल में सोफे पर ही आराम करने के लिए बैठ गई। वहां पर बैठते हुए उसने नोटिस किया कि हर्षिता भी वहां पर साइड में बैठी हुई अपने मोबाइल में कुछ कर रही थी और उसे गौर से देखने पर शिविका को समझ आया कि हर्षिता की आंखें काफी सूजी हुई थीं। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कि वो रोई है या फिर किसी बात को लेकर बहुत ही ज्यादा हर्ट है। शिविका के अलावा घर में और ऐसा कोई भी नहीं था जो हर्षिता से बैठकर बातचीत करे और उसके हालचाल पूछे। हर्षिता भी इस बात पर ज्यादा कंप्लेन नहीं करती थी क्योंकि वो पहले ही दूसरे के घर में थी। वे लोग उसे रहने खाने पीने दे रहे थे और यहाँ तक कि उसके कॉम्पिटिशन के लिए सपोर्ट कर रहे थे। उसके लिए इतना ही बहुत था, इससे और ज्यादा की उम्मीद वो नहीं रखती थी किसी से भी। लेकिन इतने दिनों से हर्षिता वहां पर थी तो शिविका अब उससे काफी ज्यादा अटैच हो गई थी, इसलिए वो रोज अपने ऑफिस से आने के बाद थोड़ी देर बैठकर उससे बातचीत करती थी। और आज जब वो वापस आई तो उसने हर्षिता को इस तरह से देखा तो उसे अच्छा नहीं लगा। इसलिए अपना कंसर्न दिखाते हुए शिविका ने बहुत ही अपनेपन से पूछा, क्या हुआ हर्षिता, तुम ठीक तो हो ना? कोई प्रॉब्लम है क्या, मुझे बताओ। हर्षिता अपनी सोच में इतनी ज्यादा परेशान थी कि उसका ध्यान भी इस तरफ नहीं गया कि कब शिविका दरवाजे से अंदर आते हुए वहां आकर उसके सामने वाले सोफे पर बैठ गई। शिविका की आवाज से हर्षिता का ध्यान उसकी तरफ हुआ और उसने उसकी तरफ देखकर जबरदस्ती मुस्कुराते हुए कहा, नहीं नहीं, कुछ भी नहीं हुआ दी, बस मैं सिलेक्ट नहीं हो पाई ना आपकी कंपनी के ऑडिशन में, तो बस इसीलिए थोड़ा सा बुरा लग रहा है और कुछ भी नहीं है। हर्षिता अपनी फेक स्माइल के नीचे अपना दर्द छुपाने की पूरी कोशिश कर रही थी, लेकिन उसका वो दर्द शिविका से छिप नहीं पाया। शिविका अपनी जगह से थोड़ा सा आगे आई और अपने हाथों से उसका चिन ऊपर करते हुए उसकी आंखों में देखकर बोली, सच में सिर्फ यही बात है क्या? वैसे सिलेक्ट क्यों नहीं हुई तुम? मैंने तो तुम्हारा ऑडिशन भी देखा था, कितना अच्छा रैंप वॉक था तुम्हारा, और उसके बाद मुझे तो लगा था कि उन लोगों ने तुम्हें सिलेक्ट कर लिया होगा। फिर ऐसा क्या हुआ ये बताओ, अच्छा क्या कमी निकाली उन लोगों ने? शिविका के सवाल पर हर्षिता ने कहा, नहीं मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता, मुझे तो बस। इतना बोलते हुए हर्षिता चुप हो गई और वो बहुत ही ज्यादा मायूस नजर आ रही थी। उसे मायूस देखकर शिविका ने उसके कंधे पर हल्के से थपथपाते हुए कहा, कोई बात नहीं, तुम कल फिर से चलना मेरे साथ, मैं बोल दूंगी उन लोगों को और मैं उनसे वजह भी पूछूंगी, आखिर क्यों रिजेक्ट किया है उन लोगों ने मेरी इतनी खूबसूरत और टैलेंटेड बहन को, मेरी कंपनी के लिए तो मुझे ऐसी ही मॉडल चाहिए।
शिविका की इस बात पर हर्षिता तुरंत ही मना करते हुए बोली, नहीं नहीं दी, रहने दीजिए दी, आपने पहले ही मेरी बहुत हेल्प की है, मेरा मतलब है कम से कम कोशिश की और आपकी वजह से मैंने ट्राई भी किया है, वो मेरे लिए एक नया एक्सपीरियंस था, लेकिन मैं सिलेक्ट नहीं हुई तो वो हो सकता है मैं उसमें फिट नहीं हुई होंगी जैसी कैटेगरी की लड़की उन्हें चाहिए, और आप साथ आओगी सिफारिश करेंगी तो फिर वही बात हो जाएगी। हर्षिता ने आज भी शिविका को मना किया, लेकिन पता नहीं क्यों वो आजकल की तरह बात नहीं कर रही थी। आज वो बिल्कुल भी कॉन्फिडेंट नहीं लग रही थी, खुद को लेकर साथ ही इतनी ज्यादा उदास थी, इसलिए शिविका को कहीं ना कहीं समझ आ गया कि जरूर कोई और बात है, सिर्फ वहाँ ऑडिशन में रिजेक्ट होने की वजह से तो हर्षिता ने अपना ऐसा हाल नहीं बनाया होगा। इस पर शिविका ने कहा, अच्छा ठीक है, मैं किसी से भी डायरेक्टली नहीं बोलूंगी तुम्हें लेने के लिए, लेकिन तुम बस कल मेरे साथ चलना, और अगर तुम सच में अपने काम को सीरियसली लेती हो तो तुम वहां पर बैठकर बाकी मॉडल्स को देख लेना कि उनमें ऐसा क्या है जिसकी कमी है तुम्हारे में, तो फिर तुम्हें सीखने में मदद मिलेगी। शिविका ने जानबूझकर बहाना बनाते हुए ये बात बोली, क्योंकि वो समझ गई थी, वो सीधे तौर पर अगर उसे ये बात बोलती कि वो बोलकर उसका सिलेक्शन करवा देगी तो हर्षिता राजी नहीं होती और फिर से उसे मना करती, लेकिन शिविका की ये बात सुनकर हर्षिता से भी मना करते नहीं बना और उसे लगा कि शायद उसे असली बात बतानी ना पड़ जाए, इसलिए वो बहुत जल्दी से बोली, ठीक है दी, मैं चलूंगी आपके साथ, बट अभी अभी मैं मुंह धोकर आती हूँ, आंख में कुछ चला गया है शायद। इतना बोलकर वो वहाँ से उठकर अपने रूम की तरफ चली गई। शिविका ने भी उसे रोकने की कोशिश नहीं की, क्योंकि वो समझ गई थी कि उसकी आंखों में फिर से आंसू आ गए हैं और उसे छुपाने के लिए ही वो वहाँ से भाग गई है। पहले शिविका को लग रहा था कि शायद कोई बड़ी बात हो, लेकिन उससे बात करने के बाद भी उसे यही लग रहा था कि सिलेक्शन न हो पाने की वजह से ही हर्षिता इतना उदास है और ऐसा बर्ताव कर रही है। हर्षिता के वहाँ से चले जाने के बाद शिविका भी बेबसी से अपना सिर हिलाती हुई वहाँ से उठी और रूम की तरफ चली गई। ऋषभ और समर के बीच आज जो कुछ भी हुआ उस बारे में अब तक उसे कोई भी खबर नहीं थी, लेकिन वो ऋषभ से बात करने और मिलने जाना चाहती थी, इसलिए वो उसके रूम पर गई। लेकिन ऋषभ इस वक्त अपनी ही सोच में डूबा हुआ था और हेडफोन लगाकर लाउड म्यूजिक वाले गाने सुन रहा था। वो किसी तरह का कोई डिस्टर्बेंस नहीं चाहता था, इसलिए उसने दरवाजा भी अंदर से लॉक कर रखा था। शिविका ने दो बार दरवाजे पर नॉक किया, लेकिन फिर कोई रिस्पांस नहीं आया, तो वो समझ गई कि या तो ऋषभ सो गया है या फिर हमेशा की तरह लाउड म्यूजिक सुन रहा होगा अपने हेडफोन पर। क्रमशः